ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस रामनवमी के पावन अवसर पर। प्रभु श्री राम की ही भूमि में, पंचवटी धाम में ये शुभ अवसर हमें मिल रहा है कि हम आज उनका आविर्भाव दिवस मना रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से हम रामायण से प्रभु श्री राम की कथा श्रवण कर रहे हैं, विशेष रूप से अयोध्या खंड, जिसमें प्रभु श्री राम की वनगमन लीला है और रामायण के बाकी सारे खंडों में ये अयोध्या खंड बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु श्री राम की जो वनगमन लीला है उसी पर निर्धारित है प्रभु श्री राम की बाकी लीलाएं, विशेष रूप से रावण का वध या रावण का उद्धार और सीता का भी चरित्र बाद में ही हमें समझ में आता है। आज सुबह तक हमने चर्चा की कि कई कई कोप भवन में मंथरा द्वारा प्रेरित, मंथरा जो कि सरस्वती द्वारा प्रेरित थी और मंथरा के अंदर शक्ति मिली थी सरस्वती के द्वारा, और मंथरा यथारूप जैसे सरस्वती से शक्ति मिली थी यथारूप मंथरा कैकेयी की बुद्धि फेर रही थी। इसे कहते हैं परंपरा। हालांकि ये उदाहरण, ये उल्टा उदाहरण है, परंतु इस उदाहरण से हम सीख ले सकते हैं कि परंपरा इस प्रकार की होनी चाहिए। जैसे माता सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि फेरी, यथारूप मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि फेरी, तो परंपरा भी, प्रामाणिक परंपरा भी इसी प्रकार से होनी चाहिए। यथारूप जैसे मिला है वैसे ही अगले को पहुंचाना वो ज्ञान। तो मंथरा ने उस परंपरा को ठीक प्रकार से उसका पालन किया, हालांकि वो कुपरंपरा थी मंथरा की, कुमंत्रणा मंथरा की। तो कैकेयी को भवन में मंथरा द्वारा प्रेरित मंथरा ने जैसे कहा, पुरानी फटी साड़ी पहने अपने सारे गहनों को यहां वहां तिथर बिथर कर कर फेंके हुए जमीन पर लेटी हुई, और महाराज दशरथ प्रवेश करते हैं और मनाने का प्रयास कर रहे हैं, कोकिल कंठी चंद्रमुखी गजगामिनी बोल रहे हैं कैकेयी को, और बहुत मधुर स्वर में कैकेयी को वो बुला रहे हैं। ये नहीं जानते कि कई कई मूर्तिमान निष्ठुरता का स्वरूप बनी हुई है और महाराज दशरथ मूर्तिमान स्नेह के स्वरूप। तो महाराज दशरथ अपना सारा प्रयास कर रहे हैं, चरण स्पर्श भी किया कई कई का, परंतु कई कई ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और जब हाथों को स्पर्श किया तो हाथ झड़का दिया। अब अपना क्रोध दिखाते हुए, और जब कैकेयी का चेहरा महाराज दशरथ ने देखा तो कैकेयी नागिन के समान दिख रही थी। और यह उदाहरण दिया है कि जब नागिन किसी को डसने जाती है तो अपनी दो जीभ बाहर निकालती है, तो वैसे ही कैकेयी अब अपने दो वर बाहर निकालने वाली है। तो महाराज दशरथ पूछ लिए कि किस वजह से इतनी क्रोधित हो, को भवन में क्यों हो। तो कैकेयी फिर अपने दो वरों के विषय में याद दिलाती है महाराज दशरथ को। तो महाराज दशरथ अब तक जानते नहीं इतने सरल स्वभाव के कि उन दो वरों के संदर्भ में उनके द्वारा कई कई मानो महाराज दशरथ के प्राण मांगने वाली है। और महाराज दशरथ कई कई को आगे कहे हैं कि मेरे प्राण ले लो परंतु राम को मत मांगो, क्योंकि राम मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तो कई कई सबसे पहला वर मांगती है कि भरत को राज्याभिषेक हो उसका, उसे राज्य मिले, और तब तक महाराज दशरथ इसे स्वीकृति दे दिए थे। हालांकि ये भी कायदे के अनुसार ठीक नहीं था, ज्येष्ठ थे राम, परंतु महाराज दशरथ स्वीकृति दे दिए। ये भी पूछे नहीं कि क्यों भरत को राज्य देना चाहती हो, स्वीकृति दे दिए। जैसे ही वर मांगा स्वीकृति दे दिए, और हाथ जोड़ते हुए अब कई कई दूसरा वर मांगती है कि, और वो भी वर कैसे मांगती है, तपस्वी का वेश हो, भोग रहित जीवन, 14 बरस वन में वास, नाम नहीं बताई पहले, और फिर कहती है राम को। और जैसे बिजली ताल के वृक्ष पर कड़क कर गिरती है, वो राम का शब्द महाराज दशरथ के ऊपर बिजली के समान कड़का। महाराज दशरथ स्तब्ध रह गए, फीका पड़ गया उनका चेहरा। महाराज दशरथ कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि वो कैकेयी को मारे या स्वयं को मारे, क्या कैकेयी की हत्या करें या आत्महत्या करें। पहले तो महाराज दशरथ को समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या सुना, और मानो महाराज दशरथ अब वो अपने आप से बाहर हो चुके थे और अपने दोनों हाथों से अपने माथे को पकड़कर महाराज दशरथ गिर गए। देखो वचनों में कितनी शक्ति होती है। महाराज दशरथ एक बहुत पराक्रमी क्षत्रिय राजा, रघुकुल के शिरोमणि, परंतु महाराज दशरथ जैसे बड़े पराक्रमी राजा अपने पत्नी के कुछ शब्दों को सुनकर, ऐसा नहीं कि कैकेयी ने कोई तीर चलाया, कोई ब्रह्मास्त्र चलाया, परंतु सारे अस्त्र शस्त्रों से भी ज्यादा भीषण शस्त्र कैकेयी ने चलाए, वाग बाण। और महाराज दशरथ वहीं पर गिर पड़े और अपने आप को महाराज दशरथ संभाल रहे थे कि मैं कैकेयी को समझाने का प्रयास करता हूं, शायद कैकेयी जान नहीं रही कि वो क्या कह रही है। तो महाराज दशरथ अब अपने आप को फिर से संभाले, क्योंकि बहुत सहनशील व्यक्ति थे महाराज दशरथ, गंभीर व्यक्ति थे। तो महाराज दशरथ अपने आप को संभालते हुए कैकेयी से कहते हैं कि कैकेयी सुनो, तुम्हारा जो पहला वर है वो तो मैं कल ही पूरा कर दूंगा, कल ही मैं दूत को भेजकर भरत को बुलवा लूंगा और अच्छा दिन देखकर भरत का राज्याभिषेक निश्चित। परंतु ये जो दूसरा वर तुमने मांगा कैकेयी, तुम समझ नहीं पा रही कि तुम्हारे मुख से कौन से वचन निकले हैं। तुम फिर से ध्यान दो, तुम क्या कह रही हो। और कैकेयी ने जब इस प्रकार के वचन सुने तो मानो आग में किसने घी डाल दिया। आग में घी डालने से क्या होता है, भभक पर वो आग बाहर निकलती है। और तो कैकेयी और क्रोधित हुई और उसका चेहरा पहले से ज्यादा लाल हुआ जब ये सुना। और कैकेयी सोचने लगी कि जो मंथरा ने जो कुछ कहा है अब वो वेद वाक्य की तरह सामने आ रहा है, कि षड्यंत्र इतना गहरा है कि ये देखिए इतना सुनने के बाद भी छोड़ नहीं रहे अपने षड्यंत्र को। और फिर कैकेयी अब तक वो हंसकर दो वरदान मांगी थी, अब वो क्रोध में और चिल्लाते हुए बस यही तुम्हारे रघुकुल की रीत है, बहुत बड़ा प्रवचन दिए थे अभी कि झूठ बोलने से क्या होता है, कितना बड़ा पाप है झूठ बोलना, याद है अभी अभी इसी मुख से कहा झूठे वचनों के बारे में, पाप के बारे में। और क्या कहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अभी 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 कहा, कहां गई वो सारी रीत। अरे क्या भरत तुम्हारे पुत्र नहीं है, क्या भरत को बाजार से खरीद कर लाए थे। देखिए इस प्रकार से इतनी निष्ठुरी औरत, इतना निर्दयी इसका हृदय कि पहले से महाराज दशरथ घायल है और ये वाक बाण चला रही। तो महाराज दशरथ अब तक महाराज दशरथ क्रोध नहीं कर रहे कैकेयी के ऊपर। फिर कैकेयी से कहते हैं, कैकेयी सुनो, भरत और राम मेरे लिए समान हैं, मेरी दोनों आंखें हैं। बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे दोनों आंखें होती हैं किसी की तो कोई भेदभाव नहीं करता कि कौन सी आंख ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या हम भेदभाव करते हैं कि ये आंख मेरी दाईं आंख बाईं आंख से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो महाराज इस दशा में भी कैकेयी को ऐसा उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि भरत और राम ये मेरी दोनों आंखें हैं, मैं इनमें कदापि भेदभाव नहीं करता, परंतु तुम भेदभाव कर रही हो। अरे मैं तो बोल रहा हूं कि भरत को मिल जाएगा राज्य, परंतु तुम राम को वन में भेजने पर क्यों उतारू हो? क्या तुम्हारा प्रेम राम से छूट गया? तुमने राम से प्रेम करना छोड़ दिया? अरे राम से कौन सी शत्रुता है तुम्हारी? राम के विषय में उन्होंने कहा कि राम के शत्रु भी राम की बड़ाई करते हैं और तुम तो मां हो। और तुम जो करने जा रही हो राम के संदर्भ में, वो राम के शत्रु भी नहीं कहेंगे। तो दशरथ इस प्रकार से समझा रहे हैं कैकेयी को। तो कैकेयी बोलती है, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने जो सुनाया है अब उसे फिर से याद करो और निर्णय लो। यदि कल प्रातः काल तक राम का वन गमन नहीं हुआ तो या तो राम को राज्याभिषेक पर तुम देखोगे या फिर मुझे जीवित। मैं आत्महत्या कर लूंगी फिर। अब देखो, आत्महत्या करने पर उतारू। और वो कहती है कि बड़े बड़े वो शास्त्र अब कोट कर बोलती है कि अरे शास्त्र पढ़ा नहीं महाराज ददीची, इन्होंने किस प्रकार का त्याग किया, अपने स्वयं का शरीर दे दिया, हड्डियां दे दी। महाराज शिबी इनका उदाहरण है और महाराज बलि का उदाहरण है, सर्वस्व उन्होंने दे दिया और आप हैं कि अपने पुत्र को पकड़कर बैठे हो। यही शास्त्र का अध्ययन किया है? अरे बाप रे, शास्त्र बोलती है। अभी इस समय में इसे शास्त्र भी याद आ रहा है। अरे जो शास्त्र बोल रही है वो किसके मुख से निकला है? इन्हीं राम के मुख से निकला है ये सारा शास्त्र। और इन्हीं के मुख से निकला हुआ ये शास्त्र इनके ही पिता को सुना रही है। तो कहती है, शास्त्र पढ़ा नहीं, सुना नहीं इनके बारे में, और अपने आप को कहते हो रघुकुल के शिरोमणि। अरे काहे के शिरोमणि, यहां सब दिख रहा है कि कितना कितना दानवीर हो तुम। और फिर कहती है कि सुनो, एक ही हो पाएगा, दो चीज नहीं हो सकती एक साथ। या तो तुम अपनी बदनामी सहो कि तुमने प्राण दिया और प्राण को पूरा नहीं किया और जग हसाई कराओ, या फिर अपना नाम रखना है, अपने कुल का नाम रखना है तो राम को वन में भेजो, बनाओ राम को राजा, लेकिन उसके साथ अपना नाम नहीं मिलेगा तुम्हें। मैं सारी दुनिया में ढिंढोरा पिटूंगी कि ये दो वर दिए थे और वर नहीं पूरा किए। सारी दुनिया में बोलूंगी मैं, बदनामी करूंगी तुम्हारी। तो उदाहरण देती है कि एक साथ दो दो चीजें नहीं हो सकती। वो कहती हैं कि चेहरे पर हंसी और क्रोध एक साथ नहीं आ सकता। या तो कोई क्रोधी हो सकता है या फिर हंसेगा, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और वो कहती हैं कि जैसे कोई व्यक्ति दानवीर है तो दानवीर होने के साथ साथ वो कंजूस नहीं हो सकता। या तो कंजूस होगा या दानवीर होगा। तो यहां पर अपनी दानता दिखा रहे हो, अपने विषय में इतना नाम रख रखा है, तो अब उसे अपने कर्मों में कर दिखाओ। तो कई कई ऐसे निष्ठुर शब्द कह रही है। तो महाराज दशरथ वो कहते हैं कई कई से, अब महाराज दशरथ वो समझ गए कि ये कई कई सुधरने वाली नहीं है। ये सुधरने के दायरे के बाहर चली गई है। तो महाराज दशरथ अब क्रोध में आकर कहते हैं, कैकेयी तुम ये सुन लो, राम राजा बनेंगे, आज नहीं तो कल। राम तो राजा बनने वाले हैं, और ये तुम्हारा जो षड्यंत्र है ना, ये कभी नहीं चलने वाला। तुम अभी चला लोगी, परंतु प्रभु श्री राम उनकी जो इच्छा है वो पूरी होकर रहेगी, और तुम जिंदगी भर पछताओगी। और वो कहते हैं कि नित्य रूप से तुम्हारा कलंक बना रहेगा कि तुमने ये किया, राम को वन में भेजा, सारी दुनिया आगे चलकर नित्य काल तक तुम्हारे ऊपर कलंक लांछन लगाएगी, यहां तक कि कलयुग में 2008 में तो नित्य रूप से तुम्हारे ऊपर यह कलंक चढ़ा रहेगा, और मेरा पश्चाताप भी नित्य रूप से बना रहेगा। और फिर कहते हैं वो कि कैकेयी तुम मेरे नजरों के सामने से हट जाओ, ये तुम्हारा जो कुत्सित चेहरा है ये फिर से कभी दिखाना मत मुझे, मैं कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहूंगा अब। और जाओ जो करना है करो। तो यहां पर कैकेयी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई, परंतु उसकी प्रसन्नता उसके बाहर के क्रोध में छिपी हुई थी। तो एक उदाहरण दिया गया है, सुंदर उदाहरण है, कि कैकेयी का जो क्रोध था वो मानो एक नदी के समान था, जिसमें और बाढ़ आ गई, बहती हुई नदी में बाढ़ आ जाए तो नदी कैसी दिखती है। तो कैकेयी के क्रोध की नदी में बाढ़ आ गई मानो। जब इस प्रकार से दशरथ के मुख से सारे वाक्य सुने, हालांकि मन में वो प्रसन्न हो रही थी, परंतु ऐसे दुर्वचन वो दुर्वचन मान रही थी उसे। तो कैकेयी का क्रोध उस नदी के समान था। तो नदी निकलती कहां से है? पहाड़ों से। तो यदि कैकेयी का क्रोध नदी के समान, तो कौन से पहाड़ से ये नदी निकली? पापों के पहाड़ से। कैकेयी के पापों के पहाड़ से ये क्रोध की नदी निकली, और इस नदी के जो दो तट, नदी के दो तट होते हैं, तो नदी के जो दो तट वो कैकेयी के दो वर, ये इस क्रोध की नदी के दो तट थे। और कैकेयी का जो हट था वो इस नदी की धारा थी, कैकेयी का हट। और जो मंथरा, उस कुबरी मंथरा की जो कुमंत्रणा थी, उसके जो षड्यंत्र थे, वो उस नदी में भंवर के समान थे। नदी में जो भंवर होता है वो बहुत खतरनाक होता है, डुबा देता है अच्छे अच्छे तैराकों को। तो ये मंथरा कि ये सारी कुमंत्रणा षड्यंत्र ये उस भंवर के समान इस नदी के अंदर। और दशरथ, दशरथ कौन? दशरथ इस नदी के तट पर एक वृक्ष, जो कि ये नदी इस वृक्ष को उखाड़ कर बाहर ले जा रही है। और ये नदी जा कहां रही है? विपत्ति के समुद्र में। तो पापों के पहाड़ से निकली ये नदी, जिसके दो तट कैकेयी के दो वर, जिसकी धारा कैकेयी का हट, जिसके अंदर का भंवर है षड्यंत्र मंथरा का, और दशरथ रूपी वृक्ष को उखाड़ती हुई ये नदी विपत्ति के समुद्र की तरफ। ये उदाहरण रामायण में दिया हुआ है कि ये स्थिति थी। तुम्हारा दशरथ अब फंसे हुए, वो फंसे हुए करे तो क्या करे, तो अब वो मूर्छित अवस्था में वहां गिर पड़े। और कई कई अब वो पूरी रात्रि भर महाराज दशरथ के साथ उसको भवन में, तो महाराज दशरथ रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करते थे। हालांकि राजा थे, परंतु फिर भी वो सुबह सुबह 4 बजे से पहले उठ जाया करते थे। ऐसा नहीं कि वो बोल देते थे कि अरे मैं राजा हूं, मुझे क्या आवश्यकता है जल्दी उठने की। और महाराज दशरथ को बड़े बड़े संगीतकार और वाद्यकार उठाया करते थे रोज, और वो भी क्या बजाया करते थे, कोई फिल्म का गाना नहीं, राम का भजन, राम के ही भजन और कीर्तन वो गाया करते थे। और महाराज दशरथ प्रभु श्री राम का नाम कीर्तन के रूप में सुनते हुए रोज उठते थे। तो अब दूसरी सुबह ये सारे गीतकार वाद्यकार ये बजा रहे थे, गा रहे थे, परंतु बहुत समय हुआ महाराज दशरथ उठे नहीं, तो और राज तिलक का दिन है तो आज तो जल्दी उठना चाहिए। तो फिर ये गए और जाकर जो मुख्यमंत्री है सुमंत्र जी, इनको बुलाया कि आप देखिए जाकर कि आज क्या हुआ, उठे नहीं अब तक। तो सुमंत्र जी जाते हैं, और जैसे ही सुमंत्र जी प्रवेश करते हैं तो वो देखते हैं कि महाराज दशरथ अपने भवन में है नहीं। तो फिर पता लगता है कि वो पिछली संध्या को कोप भवन गए थे, तो तुरंत सुमंत्र जी कोप भवन जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि महाराज दशरथ मूर्छित, जैसे कोई मूर्छित पशु पड़ा हो। और उदाहरण दिया गया है महाराज दशरथ जैसे कोई मछली को अभी अभी जल से निकालकर बाहर रख दिया तो कैसे वो तड़पती है वो मछली, वैसे महाराज दशरथ की दशा थी। मानो कोई पक्षी के पंख काट दिए हों और वो पक्षी फड़फड़ाता हुआ गिरा हुआ है, वैसे महाराज दशरथ गिरे हुए, वो भी जमीन पर। तो सुमंत्र जी ने जैसे ही देखा तो चिंतित हुए, और फिर कैकेयी को देखा पलंग पर बैठे, और कैकेयी उसका चेहरा एकदम बदला हुआ सा और कपट और क्रोध से भरा हुआ चेहरा। तो सुमंत्र जी समझ गए कि कुछ बहुत गहरी बात है शायद। तो सुमंत्र जी कुछ कहने से पहले कैकेयी ने सुमंत्र जी से कहा, सुमंत्र जी जाओ और तुरंत राम को बुलाओ। तो महारानी का आदेश है और सुमंत्र जी बाकी कुछ पूछे नहीं, क्यों बुलाऊं और ऐसा कुछ पूछे नहीं, गए वो तुरंत गए राम के भवन में। और राम उस समय उठे ही थे, उन्होंने अपना दातुन ही किया था, स्नान नहीं हुआ था उनका। तो सुमंत्र जी जाकर कहते हैं कि माता कैकेयी और दशरथ बुलाए हैं आपको। तो प्रभु श्री राम तुरंत निकल पड़े। पहले उन्होंने सुमंत्र जी के चरण छुए, वो सुमंत्र जी को भी अपने पिता के समान मानते थे, तो सुमंत्र जी के चरण स्पर्श किए और फिर जैसे ही यह आदेश सुना तो निकल पड़े और चलते हुए जल्दी जल्दी दोनों चलते हुए जा रहे हैं। तो अयोध्या वासियों ने जब ये दृश्य देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा कि आज ये राजा बनने वाले हैं और कोई रथ नहीं, ऐसे ही चलकर जा रहे हैं और क्या बात हुई। तो सारे अयोध्या वासी चिंतित हो गए और जैसे ही राम अब वो पहुंचते हैं कोप भवन में, तो प्रभु श्री राम जब अपने पिता दशरथ को देखते हैं तो तुरंत उनका चेहरा बहुत मायूसी में छा जाता है कि ऐसी दशा मेरे पिताजी की। और फिर माता कैकेयी की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले माता कैकेयी के चरण को स्पर्श कर उन्हें जननी कहते हैं। हालांकि कैकेयी उनकी जननी नहीं थी, कौशल्या थी इनकी जननी, परंतु ये माता कैकेयी को अपनी जननी मानते थे। अब देखिए ये जननी कह रहे हैं इन्हें और ये जननी क्या करने वाली है, तो इन्हें जननी पुकारते हैं और कैकेयी कहती हैं कि राम सुनो, तुम्हारे जो पिता हैं वो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं इसलिए वो तुमसे कह नहीं पा रहे। ये देखो इसकी बातें, इतना प्रेम करते हैं इसलिए बोल नहीं पा रहे, इसलिए मैं बोलती हूं कि इनकी क्या इच्छा है। आज इनकी इच्छा है कि आज तुम्हारा राज्याभिषेक तुम्हारे बदले भरत का हो और तुम्हें वनवास मिले 14 बरस तक, ये इनकी इच्छा है। अरे इनकी क्या, इसकी इच्छा है, ये नहीं बोल रही कि मेरी इच्छा है, बोलते हैं कि इनकी इच्छा है और ये बोल नहीं पा रहे क्योंकि बहुत स्नेह करते हैं इसलिए ऐसी बात ये नहीं बोल पा रहे, इसलिए मैं बोलती हूं। अब सोचिए कि किसी का राज्याभिषेक उस दिन होने वाला है और यदि उसे कोई उसकी सौतेली मां ये बात सुनाए कि तुम्हारा आज तो राज्याभिषेक नहीं होगा और इसके बदले में वनवास वनगमन, तो क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए किसी व्यक्ति की, साधारण व्यक्ति की, क्योंकि ये असाधारण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो प्रभु श्री राम वो माता कैकेयी की तरफ देखते हुए कहते हैं, वो मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए कैकेयी से कहते हैं कि धन्य है वो पुत्र जिसे आप जैसी माता मिली, कि मैं अपना सौभाग्य नहीं नाप पा रहा कि कितना मेरा सौभाग्य है कि आप जैसी माता मिली है, कि जिसने मेरे करोड़ों करोड़ों पुण्य कर्मों संचित पुण्य कर्मों को आज फलीभूत होकर ऐसा वरदान मुझे दिया। कि मुझे वन गमन वो भी 14 बरस, कि मैं 14 बरस तक बड़े बड़े ऋषि मुनियों का संग कर पाऊंगा, अरे ऐसा सौभाग्य किसे मिलता है। कई कई ये सब सुन रही थी तो वो अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सकी कि क्या राम सही में खुश है इसमें, परंतु दिखा नहीं रही थी उसका असमंजस। तो प्रभु श्री राम वो कहते हैं कि मेरा सौभाग्य है, अरे मैं वही सोच रहा था कि मेरा विवाह सीता से हुआ है, अभी अभी सीता से मेरा विवाह हुआ है और मुझे ये राज्य का कारभार दे रहे हैं पिताजी, तो मैं सोच रहा था कि राजा बन जाऊंगा तो सीता के साथ समय नहीं बिता पाऊंगा, तो ये बहुत अच्छा हुआ कि अब आपने इस प्रकार की योजना की है कि अब मैं और सीता इतना 14 बरस एक साथ बिता पाएंगे, कि आप इस बात को इतना डरे हुए क्यों कह रही हो, खुलकर आपको कहना चाहिए था। ये देखिए प्रभु श्री राम की निस्पृहता कि ये प्रतिक्रिया, और स्वाभाविक, ऐसा नहीं कि वो प्लान कर आए थे कि मैं ऐसा बोलूंगा, स्वाभाविक रूप से निकला उनके मुख से। और उसी समय महाराज दशरथ वो बेहोश गिरे पड़े थे, उनकी मूर्छा टूटी और फिर वो होश में आए, और जैसे ही वो होश में आए तो उन्होंने राम को देखा तो महाराज दशरथ की दशा ऐसी थी कि मानो कोई सर्प जो अपने मणि को खो देता है, सर्पों के ऊपर मणि पाया जाता है, तो सर्प जब अपने मणि को खो देता है तो बहुत विकल हो जाता है, और जब वो अपने मणि को फिर से पा लेता है तो बहुत प्रसन्नचित हो जाता है। तो महाराज दशरथ मानो उस सर्प के समान थे जिसे अपना खोया हुआ मणि फिर से मिल गया हो। तो तुरंत वो राम को आलिंगन किए, और दशरथ अब तक ये नहीं सुने थे कि कैकेयी ने बोल दिया है, वो बाण चला दिया है कैकेयी ने। महाराज दशरथ वो शिवजी से प्रार्थना करने लगे। देखिए क्या प्रार्थना करते हैं महाराज दशरथ, वो शिवजी से प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, आप सर्वशक्तिमान हैं, यदि मैंने कोई भी पुण्य किया है, यदि मैंने आपको कभी भी प्रसन्न किया हो किसी भी तरीके से, तो आज मुझे एक वरदान आपसे चाहिए। एक वरदान मैं आपसे मांगना चाहता हूं कि आज आप राम की मति फेर दीजिए, कि राम मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन कर दे। क्योंकि महाराज दशरथ वो सोचे कि उन्हें बोलना होगा ये सब, ये नहीं जानते कि ये कई पहले ही बोल दी है सब कुछ। तो शिवजी से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे वरदान दीजिए कि राम की मति फेर कर राम मेरी अवज्ञा करना शुरू कर दे। क्योंकि महाराज दशरथ जानते थे, महाराज दशरथ जानते थे कि राम एक बार भी सुन लेंगे, इसलिए जब वो कैकेयी को मना रहे थे तो महाराज दशरथ ने बीच में कैकेयी से कहा, कैकेयी तुम जोर से मत बोलो ये बात, यदि ये बात राम तक पहुंच जाएगी तो राम वहां से ही वनवास निकल जाएंगे। तो महाराज दशरथ ने कैकेयी से कहा, अरे मैं वनवास चला जाता हूं, तो इसलिए महाराज दशरथ शिवजी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं जानता हूं कि जो मेरा पुत्र है राम, ये कभी मेरी अवज्ञा नहीं किए, तो मति फेर दीजिए मेरे पुत्र की, कि जैसे कोई कुपुत्र होता है किसी का और वो कैसे अपने पिता की अवज्ञा करता है, वैसे राम को बना दो कुछ समय के लिए। ये महाराज दशरथ की प्रार्थना। अब प्रभु श्री राम वो महाराज दशरथ से कहते हैं, पिताश्री इतनी सी बात के लिए आप इतना व्याकुल क्यों हैं? वो कहते हैं इतनी सी बात है, अरे वन जाना है ना, इतनी सी बात, और वो भी 14 बरस। क्या है 14 बरस? और वन में इतने बड़े बड़े महान ऋषियों का संग मिलेगा, साधुओं का संग मिलेगा, अरे इससे बड़ा सौभाग्य और क्या है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी गया और अभी आया। और प्रभु श्री राम जानते थे कि वो ज्यादा यदि रुकेंगे तो महाराज दशरथ और व्याकुल होंगे, तो प्रभु श्री राम वहां से निकल पड़े और निकलकर कौशल्या के भवन की तरफ जाते हैं। अब जैसे ही वो कौशल्या के भवन में प्रवेश करते हैं तो माता कौशल्या राम को देखकर इतना प्रफुल्लित होती है, क्योंकि आज के दिन राज्याभिषेक के समाचार सुना है कौशल्या ने। तो सबसे पहले प्रभु श्री राम चरण स्पर्श करते हैं कौशल्या का, और कौशल्या आलिंगन करती है अपने पुत्र का और कहती है कि आज ये शुभ समाचार मैंने सुना है कि तुम्हें तुम्हारे पिताश्री अयोध्या का राज्य दे रहे हैं, ये मैंने शुभ समाचार सुना है आज। तो प्रभु श्री राम के साथ सुमंत्र जी नहीं आए, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाए ये सब, तो उन्होंने अपने पुत्र को भेज दिया, क्योंकि सुमंत्र जी नहीं, वो कल्पना में नहीं कर पा रहे थे कि कौशल्य के साथ क्या होगा। तो जब कौशल्या ने प्रभु श्री राम से कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें आज अयोध्या का राज्य दिया है, देने वाले हैं, तो अब देखिए प्रभु श्री राम कैसे कहते हैं अपनी माता से। वो कहते हैं कि अरे अब आपने नया समाचार नहीं सुना, वो तो पुराना समाचार था, वो तो पुराना न्यूज था, कल का न्यूज है, वो कल का न्यूज पेपर में पढ़ा होगा आपने, आज सकाळ तो आज का नया नया ताजा समाचार ये है कि पिताजी ने मुझे अयोध्या का नहीं वन का राजा बनाया है। अरे अयोध्या तो इतनी सी नगरी है, सारे वनों का राजा बना दिया मुझे आज पिताजी ने, और बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है इन वनों को संभालना। तो माता कौशल्या समझ नहीं पाई कि ये क्या बात बोल रहा है कि वन का राज्य दिया है, वन का राजा बना दिया। तो माता कौशल्या समझ नहीं पाई, तो सुमंत्र जी के पुत्र ने सब बता दिया कि ये सब कई कई के करतूत हैं और कई कई ने ये वर लिए हैं दो, और ये सब कुछ हुआ है। तो अब माता कौशल्या वो महाराज दशरथ के समान स्तब्ध, हालांकि माता कौशल्या वो महाराज दशरथ से भी ज्यादा गंभीर महिला थी, बहुत ज्यादा सहनशील थी माता कौशल्या। तो जैसे ही माता कौशल्या ने ये सुना तो वो स्तब्ध हो गई और माता कौशल्या की आंख भर गई। केवल माता कौशल्या के आंखों से आंसू बह रहे थे और कोई भी प्रकार की हलचल नहीं थी उनके शरीर में, केवल टप 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 आंसू बहने लगे। और माता कौशल्या वो राम से पूछती है कि राम कौन से अपराध के लिए सजा मिल रही है, कौन से अपराध के लिए सजा मिल रही है तुम्हें? तो रामचंद्र जी कहते हैं सजा नहीं, अरे वरदान है, इसे सजा क्यों बोल रही हैं आप? तो माता कौशल्या उन्होंने कहा प्रभु श्री राम से कि यदि तुम्हारे पिता ने ये कहा है तो मैं तुम्हारे पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर सकती हूं और तुम्हें रोक सकती हूं, लेकिन यदि कैकेयी की इच्छा है और कैकेयी ने यदि कहा है और कैकेयी ने यह वचन मांग लिया है तुम्हारे पिता से, तो मैं असहाय हूं। और कौशल्य की स्थिति कैसी थी कि कौशल्या सोच रही थी कि मेरा मेरे पति और रघुकुल की तरफ भी मेरा धर्म है और मेरे पुत्र के प्रति भी मेरा धर्म है, तो दोनों धर्मों को कैसे निभाऊंगी मैं? तो मैं राम को यह भी नहीं कह सकती कि जाओ पालन करो अपने पिता की आज्ञा का, और मैं राम से यह भी नहीं कह सकती कि मत जाओ, क्योंकि फिर रघुकुल पर कलंक चढ़ेगा मेरे वजह से। तो माता कौशल्या की स्थिति कैसी थी कि उस सांप की तरह जिसने छुछुंदर को पकड़ा हो, सांप जब छुछुंदर को अपने मुख में पकड़ता है तो अपनी बहुत बड़ी गलती मानता है, क्योंकि सांप यदि छुछुंदर को खा ले तो मर जाए, और यदि सांप उस छुछुंदर को छोड़ दे तो अंधा हो जाता है। तो न तो अंदर खा सकता है उस छुछुंदर को, न वो अब उगल सकता है बाहर। तो ये माता कौशल्या की स्थिति थी कि माता कौशल्या न तो कह सक रही थी कि तुम जाओ पालन करो अपने पिता के आदेश का, और न वो ये कह सकती थी कि नहीं अवज्ञा कर दो उनकी आज्ञा का। तो माता कौशल्या स्थिति में वो निशब्द कुछ कह नहीं पाई और वो शांत हो गई, और सुमंत्र जी के पुत्र रोने बिलखने लगे, वो वहां से चले गए, वो इस दृश्य को देख नहीं पा रहे थे, सहन नहीं कर पा रहे थे। और फिर माता कौशल्या वो थोड़ा अपने आप को संभाल कर कहती है कि अब यदि प्रभु की यही इच्छा है, अब कौन है प्रभु, यही तो है प्रभु, यदि प्रभु की यही इच्छा है तो मैं अबला स्त्री क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर कौशल्या कहती है कि ठीक है तुम जाओ वन में, और भगवान, ये मैं भूल गया बताना कि भगवान जब माता कौशल्या को बता रहे थे कि वन में जाना है तो ये भी बताना होगा कितने समय के लिए, नहीं तो केवल यदि इतना बताया होता कि वन में जाना है तो माता कौशल्या जान नहीं पाती ठीक है वन में घूम कर आएंगे शायद, या शिकार के लिए जाकर आएंगे, तो ये बताना था कि 14 बरस के लिए जाना है। तो अब देखिए प्रभु श्री राम अपनी माता को कैसे बताते हैं, वो कहते हैं केवल 4 और 10, केवल 4 और 10 बरस जाना है। तो पहले 4 बरस कहा ताकि कम मात्रा पहले बताई, केवल 4 और 10 बरस। अरे 4 और 10 या 10 और 4 जो भी है, 14 है ना। तो माता कौशल्या कहती है कि अब वन देव और वन देवी ये तुम्हारे माता पिता बने, और वो कहती है कि मैं सभी देवताओं से प्रार्थना करती रहूंगी कि वो तुम्हारी रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। बहुत सुंदर उदाहरण दिया माता कौशल्या ने कि जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं, ये पलकें ऐसी हैं कि यदि कोई सुई चुभाए आंखों में तो सबसे पहले पलकों से उस सुई को जाना होगा। वो पलकें जाने नहीं देंगी उस सुई को जब तक कि वो अपने से उस सुई को नहीं धसाएंगी। वैसे ही कौशल्या माता कहती हैं कि सारे देवता तुम्हारी रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। और जब माता कौशल्या इस प्रकार से बोल रही थी तब सीता देवी ने प्रवेश किया। सीता देवी अब सब कुछ सुन ली थी, जान ली थी कि क्या होने वाला है। तो सीता देवी प्रवेश की और वहां पर एक प्रकार की शांतता छाई हुई थी कौशल्या के भवन में, और जैसे स्मशान में शांतता छाती है वैसी शांति, उसे कहते हैं स्मशान शांति। तो स्मशान शांति के समान वहां पर शांति छाई हुई थी। तो जब सीता देवी ने प्रवेश किया तो सीता देवी जाकर सबसे पहले माता कौशल्या के चरण को स्पर्श करती हैं और वो बगल में खड़ी हो जाती है, कुछ कहती नहीं, केवल खड़ी हो जाती है, और वो अपने पैरों के नख से धरती कुरेदने लगती है। ये अक्सर शास्त्रों में बताया गया है कि जब स्त्रियां वो चिंतित होती हैं तो अपनी चिंता व्यक्त करती हैं, अपने पैरों के नाखूनों से धरती को कुरेदती हैं। जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को आई थी और भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से वापस जाने के लिए कह दिया, क्या ये मध्य रात्रि में यहां पर आई हो, बुलाया इन्होंने था, मुरली बजाई इन्होंने, और फिर कहते हैं कि ये कोई समय है कि किसी सुशील घराने की स्त्री को इस समय और वो भी वन में आना, ये उचित नहीं, जाओ जाओ फिर से। तो गोपियां आप समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, तो वो अपने पैरों के नाखूनों से धरती कुरेदने लगी, भागवत में कहा गया। तो वैसे ही सीता देवी वो भी अपने नाखूनों से धरती को कुरेद रही थी और वहां पर उसकी आवाज हो रही थी और उनके नूपुर बज रहे थे, तो केवल नूपुर की आवाज अब सुनाई दे रही थी। जैसे कई बार प्रवचन में सेलफोन बजता है ना, तो सभी देखते हैं, कई कारण हैं वो सेलफोन बजते ही सभी देखने के, कि प्रवचन से इतना बोर हो जाते हैं कि अरे थोड़ी दूसरी कोई रिंगटोन तो सुनने मिला, ये टोन तो इतना बोर हो रहा है इस टोन में। तो नूपुर की आवाजें हो रही थी। तो बहुत सुंदर बताया गया है रामायण में कि नूपुर, मानो नूपुर बोल रहे थे सीता देवी से, नूपुर सीता देवी से ये बोल रहे थे कि आप हमें मत त्यागना, हम जानते हैं कि आप जाओगे वन में और एक तपस्विनी का वेश धारण करोगे और इन नूपुरों को आप निकालोगे, कृपा कर हमें त्यागना मत, क्योंकि हमारा सौभाग्य जो हमें मिला है हम उस सौभाग्य को नहीं छोड़ना चाहते, आपके चरणों की सेवा में हम हैं। तो वो नूपुर बज कर, मानो बज बज कर सीता से याचना कर रहे हैं कि हमें मत त्यागना। और कौशल्या फिर प्रभु श्री राम से कहती है कि राम, सीता की इच्छा है कि वो भी तुम्हारे साथ वन में जाए, परंतु मैं बताना चाहूंगी, कौशल्या ने कहा, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सीता है इसे मैंने कैसे रखा है अपने साथ। यहां पर देखिए, रामायण से हमें सिखाया जा रहा है कि सास और बहू में रिश्ता कैसे होना चाहिए। तो कौशल्या है सास और सीता देवी है बहू। तो माता कौशल्या प्रभु श्री राम से कहती हैं कि राम, मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि मैंने कभी सीता को दीपक भी बुझाने के लिए नहीं कहा है। और ये जो सीता है ये पलंग, पीठ, गोद और हिंडोला को छोड़कर कभी इसने अपने चरण नहीं रखे हैं नीचे। पलंग पीठ, पीठ बैठने का कोई आसन होता है, पलंग पीठ, हिंडोला और गोद, जब बचपन में वो गोद में थी तो कभी इसने अपने चरण, ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो कभी जमीन पर उतरी नहीं, ये एक मुहावरा है। अभी तो अपने नाखूनों से तो कुरेद रहे ना धरती को, ये एक मुहावरा माता कौशल्या कह रही है कि इसे मैंने कभी किसी प्रकार के कठिन कार्य में नहीं लगाया है। तो माता कौशल्या मानो जितनी भी सासें हैं उनको सिखा रही है कि अपने बहुओं के साथ कैसे पेश आना चाहिए। अब इसका बात यह नहीं कि सारे बहुएं जो हैं वो पलंग पर लेटकर फिर कहें अरे माता कौशल्या ने सिखाया है तुम्हें, क्या सिखाया है, पलंग पीठ हिंडोला और गोद, इसके अलावा हम कहीं उतरेंगे नहीं। हालांकि माता कौशल्या इस प्रकार से वो व्यवहार करती थी सीता देवी के साथ, परंतु सीता देवी तो वो दिन रात माता कौशल्या की सेवा में रहती थी। तो यदि सास बहू के विषय में भी जानना है तो हमारे शास्त्र में दिया गया है, टीवी देखने की जरूरत नहीं है। कि यहां पर इतने सुंदर उदाहरण हैं कि माता कौशल्या और सीता देवी का रिश्ता कैसा था। और माता कौशल्या ये सब इसलिए राम को सुना रही हैं कि माता कौशल्या राम से ये कह रही हैं कि सीता को मत ले जाना अपने साथ, ये जाना चाहती हैं, परंतु यदि सीता को ले जाओगे तब उसी क्षण मेरे प्राण छूट जाएंगे, उसी क्षण मेरे प्राण छूट जाएंगे मुझसे, क्योंकि यही एक सहारा है जिसे देख देख कर मैं तुम्हें याद कर सकूंगी। और माता कौशल्या प्रभु श्री राम से कहती हैं कि मैं एक और बात सीता के विषय में बताती हूं, ये सीता ये इतनी कोमल है और इतनी डरपोक है ये, कि ये जब दीवार पर किसी वानर के चित्र को भी देखती है तो डर जाती है। और तुम इसे यदि वन में ले जाओगे और आगे चलकर तो पूरी वानर सेना आने वाली है। तो माता कौशल्या बता रही है कि ये वानर दीवार पर बने वानर के चित्र को देखकर डर जाती है ये सीता। आजकल यदि किसी कोई सास अपना बहू का परिचय दे रही होती तो कही होती कि अरे तुम्हारे चित्र को देखकर डर जाती है दीवार पर, अर्थात वानर से भी भयानक तुम्हारा चित्र लगता है तुम्हारी पत्नी को। तो ये सब बात बता रही है ताकि वो सीता को रुका ले। तो अब प्रभु श्री राम, अब उन्हें सीता को कहना है कि तुम रुक जाओ मेरी मां के पास, अपनी सास के पास रुको। तो प्रभु श्री राम, आज तक वो कभी सीता के साथ कौशल्या और महाराज दशरथ के सामने बात नहीं किए थे। देखिए संस्कृति कि उन्होंने आज तक कभी माता कौशल्या के सामने अपनी पत्नी से बात नहीं की थी। ये भगवान सिखा रहे हैं कि कैसे संस्कार होने चाहिए। आजकल तो सब सामने कूदते फांदते, बातचीत तो खैर छोड़ दीजिए। तो भगवान अब देश काल पात्र को देखकर अभी बोलना पड़ रहा है, क्योंकि माता कौशल्या ने जो इच्छा व्यक्त की है तो सीता देवी को बताना होगा। तो अब उसे देखते हुए प्रभु श्री राम कहते हैं, वो कहते हैं सीता से कि देखो सीता, तुम यदि मेरा और अपना हित चाहती हो तो तुम रुक जाओ, मेरे साथ मत आना। और वो कहते हैं कि तुम अपनी सास की सेवा में लगो। 14 बरस उनके शब्द देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी मां के साथ रहो, और कोई होता तो बोलता, सबसे पहले और कोई होता तो बोलता, अरे छोड़ो क्या करना इस परिवार से, चलो हम दोनों चलते हैं, भाड़ में जाए ये पिता और भाड़ में जाए ये सारा परिवार, रघुकुल रीत और ये वो, चलो चलो हम सब चलते हैं। तो आजकल का कोई पति होता तो पत्नी को कहता है, भाड़ में जाए, चलो हम चलते हैं कहीं दूसरा घर लेते हैं नासिक में। तो प्रभु श्री राम वो कहते हैं कि तुम अपनी सास की सेवा में लगना, ये नहीं कहा कि मेरी मां की सेवा में लगो। तो यहां पर प्रभु श्री राम ये दर्शा रहे हैं कि तुम्हारा रिश्ता और गहरा मैं बनाना चाहता हूं तुम्हारी सास के साथ, न कि मेरी मां के साथ। ये दोनों का दूसरा अर्थ हो जाएगा यदि वो कहते कि मेरी मां के साथ रहो ना। जब उन्होंने ये कहा कि अपने सास के साथ रहो तो वो अपनापन वहां पर और गहरा कर रहे हैं सीता देवी और कौशल्या का। और उन्होंने कहा कि एक पुत्र वधु के लिए सर्वोच्च धर्म है कि वो अपने सास और ससुर की सेवा करे। ये राम कह रहे हैं कि पुत्र वधु का सर्वोच्च धर्म है कि सास और ससुर की सेवा करे, क्योंकि असली माता पिता उसके सास और ससुर हैं। क्योंकि अपने पिता माता पिता के साथ जिन्होंने जन्म दिया है तो बहुत कुछ समय के लिए वो रहती हैं, उसका अधिकांश जीवन तो वो सास ससुर के साथ साधारणतः बिताना उसे होता है। तो प्रभु श्री राम सीता देवी को इस प्रकार से बोल रहे हैं, और फिर वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पिता से ये वचन लिया था, वचन दिया था, मैंने महाराज जनक को कहा था कि मैं हर समय तुम्हारी पुत्री को ऐश्वर्य में रखूंगा, सब प्रकार की सुख सुविधा और ऐसे ऐश्वर्य में तुम्हारी पुत्री को मैं रखूंगा, पलकों पर बिठाकर, जिसे बोलते हैं ना, ये भी मुहावरा है, इसका अर्थ ये नहीं कि उठाकर पलकों पर बिठाने को एडजस्ट करो। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पिता को ये वचन दिया था कि मैं तुम्हें पलकों पर बिठाकर रखूंगा, तो मैं उस वचन से मुकर नहीं सकता। तो देखिए सीता देवी क्या कहती हैं। सीता देवी कहती हैं कि आप अपने वचन से बद्ध हैं और मैं भी अपने वचन से बद्ध हूं, मैंने भी अपने पिता को यह वचन दिया था कि मैं कभी अपने पति को नहीं छोड़ूंगी, तो आप बताइए कि क्या मैं उस वचन को तोड़ूं। और सीता देवी एक बहुत सुंदर बात कहती हैं प्रभु श्री राम से, वो कहती हैं कि आपके साथ यदि मैं नहीं गई तो आपके साथ मेरे प्राण जाएंगे। तो या तो मैं या मेरे प्राण, और मैं का अर्थ है प्राण। तो सीता देवी कहती हैं कि यदि आप मेरे शरीर को भी ले जाओगे तो कम से कम ये शरीर कुछ सेवा तो करेगा आपकी, केवल प्राण यदि जाएंगे तो वो क्या सेवा कर पाएंगे। तो इसलिए सीता देवी प्रभु श्री राम से कहती हैं कि अब आपके ऊपर मैं ये बात छोड़ती हूं कि यदि मैं अपने देह के सहित नहीं तो मेरा प्राण वो आपके साथ जाने ही वाला है, जैसे ही आप निकले प्राण निकला। और सीता देवी ने ये बात ऐसे कोई बनाकर नहीं कही, स्वाभाविक रूप से और अपने मन से होकर कही ये बात। ये बात ऐसा नहीं कि कोई कविता के रूप में कह दी, कोई उदाहरण के रूप में किसी और बात को सिद्ध करने के लिए, वो इस बात को मान रही थी। तो अब राम और माता कौशल्या वो क्या कहे अब सीता देवी से, वो कुछ कह नहीं पाए क्योंकि यहां पर वचनों की बात चल रही है कि दशरथ महाराज ने वचन दिया कैकेयी को, कैकेयी ने वचन लिया राम से, राम ने वचन दिया कौशल्या को, कौशल्या वचनबद्ध, यहां सीता भी वचनबद्ध, राम भी वचनबद्ध, दोनों वचनबद्ध, सभी वचनों का फेर चल रहा है। तो सभी एक दूसरे को शांत कर रहे हैं अपना अपना वचन सुना सुना कर कि कैकेयी ने महाराज दशरथ को शांत किया और प्रभु श्री राम ने वही कैकेयी के वचन को माता कौशल्या को सुनाकर माता कौशल्या को शांत किया और फिर सीता देवी ने अपने वचन सुनाकर प्रभु श्री राम को शांत कर दिया। तो इस प्रकार से अब अगली बारी थी लक्ष्मण। हालांकि लक्ष्मण का प्रसंग बहुत बड़ा प्रसंग है कि उनकी चर्चा हम निवांत रूप से करना चाहते हैं, इसलिए लक्ष्मण और प्रभु श्री राम और सीता का जो वन गमन कैसे प्रारंभ हुआ इसकी चर्चा इतने कम समय में संभव नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि प्रभु श्री राम इस वर्ष वन में न जाएं। इसलिए कम से कम हम अपने कथा के अनुसार उन्हें रोक कर रखेंगे एक साल तक, और यदि प्रभु की इच्छा हुई तो अगले साल ये बंधन टूटेगा और फिर शायद वन गमन उनका प्रारंभ होगा। परंतु मैं इसलिए वो प्रसंग पूरा नहीं सुना रहा हूं क्योंकि आज का जो मुख्य दिवस है इस पर भी कुछ चर्चा होनी चाहिए कि रामनवमी आज इस दिन का महत्व क्या है। प्रभु श्री राम और भगवान कृष्ण, इन दोनों ये जो अवतार हैं ये सबसे प्रसिद्ध अवतार हैं भगवान के, इसलिए श्रीधर स्वामी जो कि भागवत के टीकाकार हैं इन्होंने कहा है राम कृष्णादि अवतारई, कि सभी अवतारों में आदि हैं राम और कृष्ण, ये दोनों आदि हैं और इसलिए राम और कृष्ण ये दोनों अवतारों की चर्चा नित्य काल से होती आ रही है और इन दोनों में प्रभु श्री राम वो जन साधारण में ज्यादा प्रसिद्ध इसलिए हैं क्योंकि प्रभु श्री राम ने जो जो धर्म हमें सिखाए हैं वो भली भांति कोई व्यक्ति उनका अनुकरण कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की, बहुत सी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का कोई अनुकरण नहीं कर सकता, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को सर्वसाधारण व्यक्ति इतनी आसानी से नहीं समझ पाता। एक तो क्योंकि वो टेढ़े खड़े रहते हैं, तो इतनी सरलता से उनका टेढ़ापन समझ में नहीं आएगा किसी को। इसलिए एक भक्त ने यह प्रार्थना की है कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में वो कहते हैं कि मेरे हृदय में केवल आप ही अंट सकते हैं, क्योंकि आप टेढ़े खड़े होते हो, त्रिभंग स्वरूप है आपका, आप टेढ़े खड़े होते हो और मेरा हृदय बहुत टेढ़ा है, तो उसमें आप फिट हो सकोगे। इसलिए मेरा टेढ़ा हृदय आप ही के लिए बना है, वो कहता है। परंतु प्रभु श्री राम की जो लीलाएं हैं वो ऐसी लीलाएं हैं कि उसका अनुकरण करना चाहिए, और इसलिए उन्होंने ये सारे धर्म स्थापित किए कि एक पुत्र का धर्म कैसा होना चाहिए, पति का धर्म, राजा का धर्म, भ्रातृ धर्म, ये सारे धर्म सिखाए प्रभु श्री राम ने। और प्रभु श्री राम ने ऐसा नहीं कि केवल वो एक ऐसे पुत्र, ऐसे भाई या ऐसे पति बने रहे कि जो साधारण कोई मनुष्य या मानव बनता है, नहीं, उन्होंने इस सब के साथ साथ अपनी प्रभुता भी दिखाई। इसलिए जब प्रभु श्री राम वो अवतरित होने वाले थे तो उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया और कहा कि तुम जाकर वानर के रूप में पहले अवतरित हो। अब देखिए देवताओं की शरणागति, कि वो बड़े बड़े देवता हैं और ये देवता बहुत सुंदर दिखते हैं और उन्हें ये सेवा दी गई कि जाकर वानर बनो। कई बार जब हमें किसी नाटक में काम करने के लिए कहा जाता है तो हमें बताया जाता है कि तुम्हारा ये रोल होगा, वो रोल होगा, तो पूछा जाता है अरे थोड़ा हीरो वीरो का रोल मिल रहा है कि नहीं। एक बंबई का एक व्यक्ति हमारे मंदिर में आना शुरू किया, तो मैं एक बार उससे बात कर रहा था तो मैंने पूछा कि कैसे आप संपर्क में आए भक्तों के, तो उसने कहा कि वो बिहार का रहने वाला, वो बंबई आया था हीरो बनने, हीरो बनने आया था। तो मैंने कहा फिर हुआ क्या, तो हीरो से यहां कहां पहुंच गए? तो उसने बताया कि वो एक, उसे एक किसी पिक्चर में काम मिला और उसकी भूमिका यह थी कि उसे किसी बस में वो हीरोइन को छेड़ना था। कहानी के अनुसार उसे वो हीरोइन को छेड़ना था और वो हीरोइन उसे थप्पड़ मारेगी, दो और हीरोइन थप्पड़ मारेगी, फिर हीरो आकर और दो तीन तमाचा लगाएगा, बस इतना ही रोल था। तो उसने, उसे जब ये रोल मिला वो सोचा कि उसे हीरो का रोल मिलेगा, परंतु यहां पर तो किसी स्त्री के हाथ का तमाचा खाना पड़ रहा है। तब वो जब शूटिंग हो रही थी तो इतनी बार इसने तमाचा खाया कि टेक रीटेक रीटेक ले लेकर उसे मार मार कर लाल कर दिया उसकी गाल। तो वो कह रहा था कि मेरी इच्छा हो रही थी कि वो जो हीरोइन थी उसे पटक पटक कर मारूं मैं, वो मजा ले रही थी मुझे मारने में, और फिर मैंने निश्चित किया भाड़ में गई ये फिल्म इंडस्ट्री, कभी मुख नहीं देखूंगा इसका मैं, जिसने मेरे मुख पर तमाचा मारा। और वो मंदिर में आया, तो मंदिर में भी आने के कई कई प्रेरणाएं मिलती हैं लोगों को। कि जैसे मंथरा ने कैकई को प्रेरित किया, वैसे ये हीरोइन ने तमाचा मारकर इसे प्रेरित किया। तो भगवान श्री राम ने सारे देवताओं को कहा कि जाकर बंदर बनो, और सारे देवता जो अपने देव पद को छोड़कर वो बंदर बन गए, ये शरणागति उनकी। और उद्धव वो श्रीमद् भागवत में प्रार्थना करते हैं कि धन्य है आपकी लीला प्रभु, कि ये सारे देवता जब गर्भ स्तुति करने आए, जब भगवान श्री कृष्ण वो पैदा होने वाले थे तो सारे देवता गर्भ स्तुति करने आए, तो भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल वो गर्भ स्तुति में रुचि नहीं लिए। उन्होंने कहा जल्दी जल्दी बोलो, इतनी लंबी लंबी स्तुतियां बोल रहे हो तुम लोग। परंतु यही देवता जब वानर बन के वो राम अवतार में आए, तो प्रभु श्री राम ने इन वानरों के साथ इतना समय बिताया, देवताओं को जल्दी जल्दी भगा दिया। अब देखिए उद्धव जी वो इस मनोभाव से बोल रहे हैं कि कोई भी ऐश्वर्यशाली व्यक्ति वो कभी भी ये नहीं दिखाएगा कि उसकी संगति किसी ओछे व्यक्ति के साथ भी है। अभी कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई बड़ा उद्योगपति है, पैसे वाला धनवान या ऐश्वर्यशाली व्यक्ति है, वो हर समय वो अपना स्टेटस बनाकर रखता है कि मैं यदि तस्वीर भी निकालूं तो किसके साथ निकालूं। वो ऐसा नहीं रास्ते में खड़े किसी भिखारी के साथ चलो थोड़ा तस्वीर निकालो पेपर में छापो। तो यहां पर उद्धव जी कहते हैं कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, परंतु आप घूम रहे हैं किन के साथ, बंदरों के साथ, और वो भी एक नहीं सैकड़ों बंदर। तो यहां पर एक और मुद्दा हम समझ सकते हैं कि ये जो आजकल के भगवान भटक रहे हैं, जो ये आजकल के जो तथाकथित भगवान भटक रहे हैं, पकड़ो इनको लेकर आओ और इन्हें दो बंदर दे दो संभालने के लिए। अरे दो नहीं, एक तो संभाल कर दिखाओ। यहां पर प्रभु श्री राम उन्होंने सैकड़ों बंदरों को संभाल कर रखा। बंदरों को संभालना बहुत मुश्किल है, तो यदि भगवान की भगवत्ता इसी में भी हम देखें तो केवल भगवान ही इतने सैकड़ों बंदरों को संभाल सकते हैं। पकड़ो इन भगवानों को जो घूम रहे हैं और बंदरों के साथ बांध दो, देखो कितना बंदरों को संभाल पाएंगे। तो प्रभु श्री राम की ये महत्ता बता रहे हैं कि आपने उन देवताओं की स्तुति को पूरा पूरा दुर्लक्ष कर इन वानरों की सेवा में आप लगे। अब भगवान श्री राम आज जो तिथि है, उनके जन्म की तिथि, इसके विषय में बताया गया है कि बहुत ही शुभ वो तिथि थी, चैत्र का महीना, मधु का मास। इस चैत्र के महीने को मधुमास भी कहते हैं। तो चैत्र का महीना, मधुमास और नवमी तिथि रामनवमी, नवमी तिथि चैत्र का मास शुक्ल पक्ष, वो भी बहुत शुभ पक्ष है शुक्ल पक्ष। उसमें रोहिणी नक्षत्र, भगवान श्री कृष्ण भी रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे, तो रोहिणी नक्षत्र और मध्य दिवस में भगवान श्री राम पैदा हुए। बहुत कृपालु की ज्यादा उपवास नहीं करवा रहे हो कि निर्जला भी 12 बजे तक, गर्मी का महीना है तो इसलिए प्यास ज्यादा लगती है, इसलिए जल्दी अवतरित हो गए वो। और मुहूर्त था अभिजीत मुहूर्त में वो पैदा हुए। और जब वो भौम वार था, मंगलवार, तो मंगलवार वो पैदा हुए। और भगवान श्री राम वो जब पैदा हुए तो उनके पैदा होने से पहले सारे देवता जाकर याचना कर रहे थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि, सारे ब्रह्मांड के ऋषि मुनि देवतागण जाकर याचना कर रहे थे कि आप आइए अवतरित होइए गिड़गिड़ाकर। आजकल के भगवान जो घूम रहे हैं, पूछे कि किसी कुत्ते ने भी बुलाया था इन्हें? बोलते हैं कि मैं वो राम हूं, मैं वो कृष्ण हूं। तो बड़े बड़े देवतागण इन्होंने प्रार्थना की और बुलाया याचना कर कर, तब वो राजी हुए आने के लिए। तो ऐसी शुभ घड़ी थी कि शीतल समीर, सुगंधित शीतल समीर बह रही थी और सब प्रकार के मंगल चिन्ह वहां पर उपस्थित हुए अयोध्या नगरी में। और वो मंगल चिन्ह अपने आप का मंगल करने आए थे, वो प्रभु का मंगल करने नहीं, अपने आप का मंगल करने वो आए थे। और जितने भी पर्वत थे, सारे पर्वतों में से सब प्रकार के रत्न वो उछल उछल कर बाहर आने लगे। नहीं तो पर्वतों को खोद खोद कर रत्न निकालना पड़ता है, परंतु ये रत्न पर्वतों से उछल उछल कर बाहर आ रहे थे। और ब्रह्मा जी ने तुरंत सभी देवताओं को सूचना दे दी कि भगवान की रामनवमी का दिन आ गया, भगवान के आविर्भाव का दिन आ गया, आज का दिन। तो सारे देवी देवता वो तैयार हुए। उन्होंने किया क्या कि अपने विमानों को पार्किंग से बाहर निकाला और अपने विमानों में एक विमान केवल पुष्पों से भरा, और वो ऐसे बड़े बड़े विमान, ये जो बोइंग आजकल के हैं इससे कई गुना ज्यादा बड़े बड़े विमान और पुष्पों से लदे हुए विमान। और ऐसा नहीं कि वो मार्केट में जाकर उन्हें खरीदना पड़े ये पुष्प भाव तोल कर कर, बहुत ही सुगंधित देवलोक के पुष्प भर दिए सारे विमानों में। तो कई विमान केवल पुष्पों से भरे हुए, कई विमान इन गंधर्वों से भरे हुए जो गीत गा रहे थे, कई विमान अप्सराओं से भरे हुए जो ऐसे ऐसे नृत्य कर रहे थे कि देवताओं ने भी ऐसा नृत्य कभी देखा नहीं इनका। वो भी अचरज में पड़ गए कि ये डांस स्टाइल तो कभी इन्होंने वहां पर भी दिखाया नहीं। तो वो अप्सरागण नृत्य करते हुए विमानों में, और कई विमान बड़े बड़े ऋषि मुनि वो मंत्रोच्चारण करते हुए, और सारी अयोध्या नगरी पुष्पों की वर्षा से भरी हुई, पूरे आकाश मंडल में और कुछ नहीं दिख रहा, पुष्प पुष्प। और रामनवमी तो इन्होंने मनाई, हम लोग क्या रामनवमी मना रहे हैं? कितने लोग आए हैं हम लोग? और भगवान की इस पुण्य भूमि में कितने लोगों को तो पता भी नहीं, घूमते फिर रहे हैं अपने इंद्रिय भोग में। परंतु जब प्रभु श्री राम अवतरित हुए तो सारा ब्रह्मांड खाली हो गया, सब अयोध्या नगरी में पहुंच गए। इन्होंने इस प्रकार से रामनवमी मनाई। और फिर जब प्रभु श्री राम के अवतीर्ण होने का मुहूर्त आया तो प्रभु श्री राम के अवतीर्ण होने के मुहूर्त पर एक बहुत ही सुंदर गीत की रचना हुई है, बहुत प्रसिद्ध गीत है, आपको पता भी होगा। तो यदि आपको पता है, याद है, तो आप गा सकते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी,
हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन भीरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज जारी भूषण वन माला नयन विशाला शोभ सिंधु करारी कह दे कर जोरी अस्तुत तोरी कहि विधि करहु अनंता माया गुण जाना पीत हमाना वेद पुराण घनंता भय खगत कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारो लोचन अधुराना तन घन श्यामा भूषण वन मालारी भूषण वन माला नयन विशाला शोभ सिंधु करारी कह देकर जोरी अस्तुत तोरी कहि विधि करहु अनंता माया गुण जाना पीत माना वेद पुराण धनंता
भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। प्रभु श्री राम का गुणगान हुआ है कि वो प्रकट हुए हैं दीन दयाल दीनानाथ के रूप में कौशल्या हितकारी। और माता कौशल्या ये सोच रही है कि उसका सबसे बड़ा हित हुआ है कि वो प्रभु श्री राम की माता बनी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। और जब प्रभु श्री राम अवतरित हुए तो वो चतुर्भुज रूप में इतने सुंदर अद्भुत रूप निहारी, सभी उनका अद्भुत रूप निहार रहे थे। उनके सुंदर सुंदर घुंघरालू केश और उनका मुखमंडल ऐसा दैदीप्यमान तेजस्वी, और अपने वो सभी भुजाओं में आयुध लिए हुए पैदा हुए थे। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जब वो पैदा हुए तो चतुर्भुज रूप में पैदा हुए अपने सारे आयुधों के साथ। तो माता देवकी ने भगवान श्री कृष्ण से कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ये आपका ऐश्वर्य वाला रूप नहीं चाहिए, आप छोटे से बाल गोपाल के रूप में आइए मेरे सामने ताकि मैं आपको दूध पिला सकूं। अरे इतने बड़े को क्या सेवा करूंगी मैं। तो तुरंत माता देवकी वो सोचने लगी कि सेवा कैसे शुरू करूं मैं, अब ये अवतरित हुए हैं इनकी सेवा प्रारंभ करनी है। वैसे ही माता कौशल्या ने प्रभु श्री राम से कहा कि आप ये अपने आयुध के साथ मत अपने आप को दिखाइए, छोटे से बाल राम के रूप में आइए ताकि मैं सेवा प्रारंभ कर सकूं। भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी, कि जब वो इस प्रकार के वन माला और सभी आभूषणों के साथ युक्त वो अवतरित हुए तो सभी देवतागण उनकी सुंदरता को देखते हुए चकाचौन रह गए। माया गुण ज्ञाना पीत अमाना वेद पुराण धनंता। और प्रभु श्री राम उनका स्वरूप ऐसा था कि यदि जिसका हृदय निर्मल नहीं तो वो प्रभु श्री राम के ऐश्वर्य को नहीं पहचान पाएगा। माया गुण ज्ञाना पीत अमाना, कि उस व्यक्ति के लिए माया द्वारा आच्छादित दिख रहे थे भगवान। वेद पुराण ध्वनंता, और केवल वेद और पुराण के द्वारा ही वो अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे। तो प्रभु श्री राम, हालांकि इनके विषय में हम एक दिन या चार दिन क्या कहेंगे, या रामनवमी के अवसर पर भी कितना हम कह पाएंगे अपने छोटे से मुख से, और कितना हम सुन पाएंगे इन दो कानों से, क्या हमारी क्षमता है। परंतु बड़े बड़े जो कथाकार ग्रंथकार हुए हैं, जैसे वाल्मीकि मुनि, गोस्वामी तुलसीदास, इन सभियों ने, गोस्वामी तुलसीदास जब वो पैदा हुए तो पैदा होते ही उनके मुंह से राम का नाम निकला, इसलिए पैदा होते ही उनका नाम था राम बोला, ये उनके उनका पैदाइशी नाम था राम बोला, क्योंकि वो पैदा होते ही आ ऊ ये सब कुछ नहीं बोले, पैदा होते ही उनके मुख से राम का नाम निकला। इसलिए राम के नाम की महिमा बहुत बताई गई है कि, और स्वयं रामायण में राम के नाम की महिमा बताई गई है कि स्वयं प्रभु श्री राम, उन्होंने जब देखा, जब सेतु बनाया जा रहा था तो उन्होंने देखा कि ये हनुमान जी इतने बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हैं और ये पत्थर तैर रहे हैं, तो प्रभु श्री राम वो सोचने लगे कि ये पत्थर तैर कैसे रहे हैं। तो उन्होंने भी एक पत्थर लिया और अकेले में जाकर उसे फेंकने का प्रयास किया, तो उन्होंने अकेले में जाकर, ताकि कोई देखे नहीं, तो वो अकेले में इसलिए गए कि यदि तैरेगा नहीं तो फिर हंसी हो जाएगी, जग हसाई हो जाएगी, तो इसलिए अकेले में जाकर कोने में समुद्र में फेंके वो पत्थर। तो जब प्रभु श्री राम ने पत्थर फेंका, हुआ क्या, डूब गया, और हनुमान जी ने इसे देख लिया। तो हनुमान जी बोले, प्रभु ये आपकी बस की बात नहीं है। तो प्रभु श्री राम हनुमान जी की तरफ देखते हैं, थोड़ा सकपका गए कि हनुमान जी ने देख लिया। और हनुमान जी कहते हैं कि ये पत्थर क्यों तैर रहे हैं मैं बताता हूं, इन सभी पत्थरों पर आपका नाम लिखा है, और क्योंकि आपका नाम लिखा है और आपका नाम आपसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो हनुमान जी ने ये कारण दिया, सबसे पहला कारण कि इसके वजह से आपके नाम में आपसे ज्यादा शक्ति है, इसलिए पत्थर तैर रहे हैं, तो आप अपना नाम लिखिए पहले, तब जाकर वो पत्थर तैरेगा। और दूसरा कारण, बहुत ही सुंदर कारण यह है कि वो कहते हैं कि प्रभु आप जिसे त्याग दो वो तो डूबने ही वाला है, यदि आपने जिसे त्याग दिया है तो वो कभी नहीं तर पाएगा, वो डूबेगा ही। तो ये हनुमान जी बता रहे हैं, और ये जो बात, ये बात इतनी फैल रही थी कि ये लंका तक बात पहुंच गई। कौन सी बात, कि पत्थर तैर रहे हैं, और ये बात मंदोदरी रावण से कहती है कि अजय सुनते हो, अरे सुना है वहां पर जिसकी पत्नी को हड़प कर लाए हो आप, वो प्रभु श्री राम सेतु बना रहे हैं और वो सेतु वो पत्थर तैर रहे हैं, कोई सिविल इंजीनियर नहीं कर सकता ऐसा काम। ऐसा नहीं था कि लंका में राम सेतु के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी शुरू हो गया, यहां तक कि रावण भी मान रहा था कि राम सेतु बना रहे, उसने भी ये नहीं कहा कि नहीं वो नहीं बनाए, रावण भी मान लिया कि हाँ सेतु, रावण ने कहा जानता हूं मैं वो सेतु बना रहे। तो क्या हुआ, तो मंदोदरी ने कहा तो क्या, अरे पत्थर को तैराया जा रहा है, इतनी शक्ति है उस राम के अंदर, तो अब भी समय है, सीता को जाकर लौटा दो, नहीं तो बहुत कुछ बुरा घट जाएगा। इतनी शक्ति कोई पत्थर को तैरा, अरे तो रावण कहा ये क्या, पत्थर को मैं भी तैरा सकता हूं। तो मंदोदरी वो शंका की कि ये मेरे पति इतना तो दम नहीं इनके अंदर कि मैं अपने पति को अच्छे से जानती हूं, अंदर बाहर से जानती हूं, बोलने में बहुत बोलता है ये, करने में कुछ नहीं। तो मंदोदरी कही पत्थर को तैराओगे? रावण ने कहा तो चलो मैं दिखाता हूं। तो मंदोदरी को अकेले ले जाता है रावण समुद्र के तट पर, लंका के समुद्र के तट पर ले जाता है और पत्थर उठाता है अपने हाथ में और उस पत्थर को अपने माथे पर पहले स्पर्श करता है और आंख बंद कर वो कुछ अपने होंठ हिलाकर बोलता है जो मंदोदरी को सुनाई नहीं देता और फिर रावण वो पत्थर फेंकता है। तो होता क्या है, हाँ वो पत्थर तैरने लगता है और मंदोदरी ने जब देखा तो रावण ने कहा देखा कि नहीं, देखो थर्माकोल का नहीं जाके देखो असली पत्थर तैर रहा है। तो मंदोदरी भी वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि भाई ये रावण में ये सारी शक्तियां कहां से आई। तो चुप अब वो क्या बोले, बेवाक। तो रावण ने कहा चलो चलो फिर से अपने महल चलते हैं, फालतू संशय करती हो, अरे मैं पराक्रमी लंकेश में क्या नहीं कर सकते, पत्थर क्या। तो एक दो महीना बीतता है और अब तक मंदोदरी उसी बातें बारे में सोच रही थी, पत्थर तैराया कैसे इसने। तो अकेले में मंदोदरी फिर रावण से पूछती है कि बाकी सब तो ठीक है, वो दो महीना पहले बताओ कि वो पत्थर को तैराया कैसे। तो रावण ने अब तक तुम भूली नहीं। तो मंदोदरी ने कहा नहीं नहीं मैं भूली नहीं, परंतु मैं सच सच जानना चाहती हूं, बताओ। तब रावण कहता है ठीक है, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी अर्धांगनी हो, धर्म पत्नी हो या जो भी अधर्म पत्नी, तो तुम्हें केवल मैं बताता हूं, किसी को बताना मत। अक्सर होता है ना पति पत्नी से कहते किसी को बताना मत, मैं तुम्हें बता रहा हूं केवल। तो रावण कहता है कि तुम्हें याद है जब मैंने वो पत्थर उठाया था उस दिन, तो मैंने अपने माथे पर उस पत्थर को स्पर्श किया था। हाँ हाँ वो मैंने देखा था, तुम आंख बंद कर कुछ बड़बड़ कर रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे, कौन से मंत्र की पट्टी पढ़ाई उस पत्थर को। तो रावण ने कहा कि मैंने जो पत्थर को उठाया अपने माथे पर लगाया, तो मैंने उस पत्थर को कहा राम की कसम तुम तेरा नहीं तो। उसे राम की कसम दिलाई थी इसलिए वो पत्थर तैरने लगा। तो राम के नाम के विषय में ये बताया गया है। एक निषाद, इसकी कथा है कि एक निषाद था जो लुटेरा था, एक डकैत था वो, तो लूटा करता था और उसका एक गैंग था, लुटेरों का गैंग था डकैतों का। तो ये निषाद सब प्रकार के कुकर्म और लूटपाट में लगा हुआ, तो ये एक दिन अपने पूरे गैंग को बुलाता है और अपने गैंग को कहता है, हालांकि पिछले जमाने का था इसलिए संस्कृत में बोलता था, तो उस समय लुटेरे भी संस्कृत बोला करते थे, तो वो संस्कृत में वो कहता है अपने गैंग से कि चोरी करने जाना है। तो कहता है वनश्च रामो, कि वन में हम जाएंगे विचरण करने के लिए, कि रमण विचरण को भी कहते हैं, कि वन बहुत रमणीय स्थान है क्योंकि वहां लोग विचरण करने जाते हैं। तो ये कहता है वनश्चरामो, हालांकि ये राम प्रभु श्री राम का नाम नहीं ले रहा था, उस मनोभाव से नहीं बोल रहा था, तो कहता है वनश्चरामो, परंतु राम का नाम इसके मुख से निकल रहा था। तो वन में जाएंगे, रमण करेंगे। वसुच हरामो वो कहता है, और वन में जो यात्रीगण वहां से यात्रा करते हैं उन सब का जो भी धन होगा संपत्ति होगी हरामो, हर लेंगे। तो वो कहता है वसु च हरामो, और ये सब कुछ करने के बाद जब हम थक जाएंगे नदिस्तरामो, फिर नदी में हम तैरेंगे। और फिर वो कहता है न भयम स्मरामो, और तुम बिल्कुल भय मत करना, मैं हूं तुम्हारे साथ। भ्यू नखो मी तुझा पाटीशी, तो इस निषाद ने जब इतनी बार राम का नाम लिया, वने च रामो वसु च हरामो नदिस्तरामो न भयम स्मरामो, जब वो इस प्रकार से इतना हर्षित हो होकर बोल रहा था तभी उसके प्राण निकले। और क्योंकि उसने राम का नाम मुख से लिया था तो वैकुंठ विमान आया और वो भगवान के धाम चला गया। बोलो प्रभु सियावर रामचंद्र की। हालांकि वो नाम कैसे ले रहा था, रामो रामो। जैसे एक बार हमारे एक भक्त वो येरवाड़ा जेल में प्रचार कर रहे थे, तो वहां पर वो लेक्चर दे रहे थे, तो जेल में प्रचार करने के बहुत से फायदे हैं। एक तो कोई सेलफोन नहीं है वहां पर, तो कोई सेलफोन बजता नहीं, और कोई वहां पर उठकर जा नहीं सकता कहीं पर, तो वहां का क्राउड मेंटेन रहता है और सभी ध्यान से सुनते हैं क्योंकि बाकी कुछ है नहीं सुनने के लिए, और कोई सोता नहीं लेक्चर में क्योंकि दिन भर वहां सोने के लिए बहुत समय मिलता है। तो जेल में प्रचार करने के बहुत फायदे। तो ये जेल में प्रचार हो रहा था, तो ये हमारे मंदिर के एक ब्रह्मचारी वो लेक्चर दे रहे थे, तो लेक्चर के पश्चात एक कैदी ने हाथ उठाया, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे। तो सबसे पहले बाकी वहां के जो पुलिसमैन थे उन्होंने देखा इसकी हिम्मत, प्रश्न पूछता है। तो प्रभु जी ने पुलिस की तरफ देखा, नहीं नहीं पूछने दो। पुलिस ने कहा पूछो पूछो, बाद में मैं पूछूंगा तुम। तो ये कैदी प्रश्न पूछता है कि बताइए महाराज श्री, ये आप जो कीर्तन करते हैं ये कीर्तन में ये रामो क्यों बोलते हैं, राम है ना, रामो रामो क्यों बोलते हैं आप। तो बाकी सब कैदी ताली बजाने का, अरे क्या प्रश्न पूछा, हमारे पास भी है कोई दमदार। तो इन्होंने उत्तर दिया प्रभु जी ने, इन्होंने कहा कि अरे चाहे राम हो या रामो, जैसे कि यदि मैं आपको आम दू और कहूं ये कहो आमो, तो चाहे मैं उसे आम कहूं या आमो कहूं, जब उसे खाओगे तो कैसा लगेगा, मधुर लगेगा। तो प्रभु श्री राम का नाम भी उसी प्रकार से मधुर है। तो प्रभु श्री राम का जो नाम है वही इस कलयुग में आविर्भूत हुआ है, और इसलिए विशेष राम नवमी का महोत्सव हम मना पाएंगे जब हम प्रभु श्री राम का नाम केवल आज के दिन नहीं, आज से हमारे नित्य जीवन काल तक हम प्रभु श्री राम का नाम हर समय अपनी जिह्वा पर रखें। यह बताया गया है कि जो राम नाम के दो अक्षर हैं, राम, तो राम नाम का उच्चारण करने के लिए पहले मुख खोलना पड़ता है, रा रा बोलने के लिए मुख खोलना पड़ता है। तो जैसे ही मुख खुलता है रा बोलने के लिए, तो सारे जो पाप और अनर्थ हैं वो बाहर निकल आते हैं और फिर म म में फिर बंद हो जाता है। तो म में जब बंद हो जाता है तो फिर वो वापस नहीं आ सकते अंदर। इसीलिए हमें नित्य रूप से यदि बंद कर देंगे फिर से मुंह और किसी के लिए राह केवल खोलेंगे तो फिर से घुस जाएंगे वो पाप। इसलिए हमें नित्य रूप से क्या बोलते रहना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसलिए यही महत्व है विशेष रूप से आज के इस पावन अवसर का कि प्रभु श्री राम को हम सबसे अधिक प्रसन्न आज कर पाएंगे जब हम प्रभु श्री राम का नाम हर समय अपने मुख पर रखेंगे और प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए हमारा जीवन काल बीते और हमारे अंत समय भी हम प्रभु श्री राम के नाम की शरण ग्रहण करते हुए प्रभु श्री राम की शरण प्राप्त हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, प्रभु श्री रामचंद्र आविर्भाव महा महोत्सव की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्री प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।